पंद्रहवें अध्याय चालू कर रहे हैं दसम स्कंद में। श्री शुक उवाच ततश्चतौ गन्धवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखभीषमं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। ततश्च पांचवें वर्ष की लीला के बाद श्री कृष्ण और बलराम पौगंड वयः श्रितौ पौगंड अवस्था में स्थित हुए। पांच वर्ष के बाद छठवें वर्ष से दसवें वर्ष के बीच की अवधि को पौगंड अवस्था कहते हैं और एक से पांच तक के कुमार अवस्था कही जाती है। छह से दस तक पौगंड अवस्था और ग्यारह से पंद्रह तक किशोर अवस्था कही जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने छह वर्ष के बाद ही किशोर अवस्था प्रकट कर दिए थे ब्रज में, इसीलिए पौगंड लीला और किशोर लीला में कोई भेद नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जो भी बाद में लीलाएं हैं ब्रज में तो प्राय किशोर के रूप में उनकी लीलाएं प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनको ब्रज किशोर कहते हैं। ब्रज का किशोर और ब्रज कुमार भी कहते हैं। ब्रज कुमार की लीला हो गई, अब ब्रज किशोर की लीला सुनिए। ततश्च पौगंड वयः श्रितौ ब्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। श्री कृष्ण और बलराम प्रारंभ में गायों के बछड़ा को चराते थे, वत्स चारण करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो बछड़ों को चराने के लिए उनको अनुमति थी। कुछ थोड़ी दूर पर जाते थे, गौएं तो बहुत दूर चली जाती थी, गौओं के बछड़ों को कृष्ण बलराम चराते थे कुछ थोड़ी दूर पर। और बछड़ों को चराते समय ही उन्होंने ब्रह्मा जी को मोह में डाला था, वो लीला हो चुकी। तो श्री कृष्ण और बलराम बारम्बार नंद महाराज से आग्रह करते थे कि हम अब गौए चराने लायक हो गए हैं, हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, हम बलवान हो गए हैं, हमको बुद्धि हो गई है, हमको भेजा जाए वन में। और इसका कारण एक और हो गया कि जिन बछड़ों को श्री कृष्ण बलराम चराते थे तो वे बछड़े सयाने हो गए, तो गोपों ने ऐसा किया कि उन बछड़ों को वे गौओं के साथ भेजने लगे जो मुक्त स्तन हो गए थे। अब गौओं का दूध वे नहीं पीते थे, गौएं दूसरा बच्चा दे चुकी थी। जो गौएं रखे हैं गांव के होंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, गौओं के बच्चे जब सयाने हो जाते हैं तो उनको गौओं के साथ भेजते हैं जंगल में चरने के लिए। तो जिन बछड़ों को श्री कृष्ण और बलराम चराए थे ये जब बड़े हो गए तो उनको गौओं के साथ भेजा जाने लगा, तो ये जाना नहीं चाहते थे क्योंकि श्री कृष्ण के चराए हुए थे, तो श्री कृष्ण के वियोग में वे गौओं के साथ नहीं जाना चाहते थे। हांकने के बाद भी ये जाना नहीं चाहते थे, सब खड़े रहते थे। अच्छा, कुछ ये भी बात होगी कि श्री कृष्ण के जो बच्चे साथी थे वे भी कुछ बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनको अनुमति दे दिया कि तुम लोग गाय चराने जा सकते हो, तो वे भी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ये दो समस्या आई थी, श्री कृष्ण के बचपन के साथ ही अब गौ चराने जाना नहीं चाहते थे, श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, और बछड़े भी गौओं के साथ नहीं जाना चाहते थे। और इधर श्री कृष्ण बलराम की इच्छा थी कि हम लोग पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबको दर्शन दें, लीला करें, आनंदित करें, और बछड़ों को चराने में बहुत सीमित थे, देश तक रहना पड़ता था। तो ब्रज में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे हमको दर्शन देंगे, क्योंकि बहुत से जीव हैं जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष स्थावर जोनी एक स्थान से दूसरे स्थान चल नहीं सकते, लेकिन वे तो जानते थे कि हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण और बलराम यही हैं और कुछ ही दूर बछड़ा चराने आते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं। उन वृक्षों को बहुत उत्कंठा थी और वन्य के पशुओं को भी, वे सभी चाहते थे कि कृष्ण बलराम पूरे ब्रजमंडल में घूमे। तो इस कारण से श्री कृष्ण बलराम की बार बार इच्छा होती थी, लेकिन माँ यशोमती यशोदा भेजती नहीं थी। कहती थी नहीं नहीं, इन बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना है, कृष्ण बड़ा चंचल है, वन में इधर उधर कुछ हो जाएगा, इसलिए इनको गाय चराने के लिए नहीं भेजना है। नंद बाबा भी मना करते थे, लेकिन कृष्ण बलराम बारम्बार हट कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि नहीं बाबा, हम सफिशियंट बुद्धिमान हो गए हैं, हम चरा लेंगे गाय, हमको भेजो वन में भेजो। बारम्बार जब आग्रह किए कृष्ण, और चूंकि बछड़े नहीं जा रहे थे, बच्चे भी नहीं जा रहे थे वन में, बहुत समस्या आ गई ब्रज में इस तरह से, इसलिए एक दिन गोपाष्टमी के दिन यह निश्चित किया गया कि आज श्री कृष्ण और बलराम गौएं चराने जाएंगे, और बछड़ा चराने की लीला उनकी खत्म हो रही है। एक गोपाष्टमी पड़ती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी को, आज भी ब्रज में वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है, गोपाष्टमी बहुत प्रसिद्ध है। गोप गौओं का पालन करना, जिस दिन श्री कृष्ण गोप हुए, इसके पहले वत्सप थे, गोवत्सप थे, और अब गोप हुए, उसी अष्टमी के दिन, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहा जाता है। तो उसी गोपाष्टमी से ये लीला प्रारंभ हो रही है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से। बहुवतुस्तव पशुपाल सम्मतो, पशुपालन के योग्य मान लिए गए श्री कृष्ण बलराम को, लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, गौएं चरा सकते हैं, वन में जा सकते हैं। तो माँ यशोदा कुछ सयाने गोपों को बहुत सतर्क बनाए कि देखना श्री कृष्ण को गौएं हाँकने के लिए इधर उधर मत भेजना, दूर एक जगह रखना, सब लोग घेर कर रखना, कभी जमुना जी के जल में इसको मत उतरने देना, हमेशा देखते रहना, कभी भी इसको कोई भूख लगे प्यास लगे तो ये ले जाओ भोजन, बारंबार श्री कृष्ण को खिलाते रहना। और श्री बलराम जी को कहे, बलराम तुम कृष्ण का संग कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण से बलराम जी कुछ बड़े थे, तो उनको माँ यशोदा समझती थी कि ये समझदार है और बलवान भी है, शरीर से भी कृष्ण की अपेक्षा ये मोटे थे। श्री बलराम जी को नियुक्त किया माँ यशोदा ने कि बेटा कभी भी कृष्ण का संग मत छोड़ना, साथ में रखना, और आज जा रहे हो वन में, लेकिन बहुत जल्दी आज आ जाना, शाम मत करना, संध्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पशुपाल सम्मत, पशुपालन में गोपालन में योग्य मान लिए गए कृष्ण। तो चले पशुपालों ने, गोपों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, कृष्ण गोचारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सबकी सम्मति से गोपाष्टमी के दिन बहुत भारी उत्सव हुआ, और श्री कृष्ण को गोचारण के लिए अब दूर वन में जाने के लिए अनुमति मिल गई। तो गाश्चार्यं तौ सखभिः समं पदर वृंदावनम पूर्णमतीव चक्रतुः, सखाओं के साथ गोचारण करते हुए कृष्ण बलराम वृंदावन में घूमने लगे। यहाँ वृंदावन का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल, संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल। तो एक विशेष बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतु, अत्यंत पवित्र बना रहे थे। वृंदावन तो पहले से ही पवित्र है, भगवान का नित्य धाम है, लेकिन पदय ही अपने चरण न्यास से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन को अतिशय पावन बना रहे थे। वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी भी पादुका नहीं पहने, पदत्राण नहीं पहने, बिना जूता के चलते हैं। ये वृंदावन धाम की विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण के और श्री बलराम के चरण चिन्ह से वो ब्रजमंडल अलंकृत होने लगा है, इसलिए अतीव पुण्यम कह रहे हैं, अतीव पुण्यम चक्रतु। पुण्यम का अर्थ होता है पवित्रता दायक, तो और संस्कृत में ऐसे पुण्यम के बहुत अर्थ होते हैं, पुण्य कार्य होता है यज्ञ करना, दान करना, जिससे जीव स्वर्ग प्राप्त करता है। लेकिन वास्तविक धरातल पर पुण्य का अर्थ है जीव की अविद्या का नाश करके भगवान कृष्ण प्रेम देना। तो जो वस्तु कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है, जीव के स्वरूपगत धर्म को प्रकाशित करती है, तो उसको पुण्य कहते हैं। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दासत्व, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास। लेकिन वर्तमान समय में हमारा कृष्ण प्रेम आवरण में पड़ गया है, ढक गया है, सहज कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा है। संसार के प्रति हमारी जितनी लालसा है, जितना प्रेम है, भगवान कृष्ण में प्रेम उतना प्रकट नहीं। यद्यपि स्वरूप से हम कृष्ण दास हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जो वस्तु उस प्रेम को प्रकट कर दे उसको पुण्यम कहते हैं। तो श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन कृष्ण प्रेम को प्रकट करता है, इसीलिए उनके श्रवण कीर्तन को पुण्यम कहा गया, पुण्य श्रवण कीर्तन। श्री कृष्ण के विषय में सुनने पर कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहुना श्रवण आदि सिद्ध चित कराय होता है। तो यह श्री कृष्ण के प्रति सहज अनुराग नित्य सिद्ध वस्तु है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना है, वो है अपने पास, लेकिन उसको प्रकट करना है श्रवण कीर्तन जल कराय से चंद श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो यह श्रीमद भागवतम सत्ता है, हमारे कृष्ण प्रीति का वर्धन करने में एक सहायक वस्तु है, ऐसा अनुभव किया गया है बारंबार। तो श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन को अतिशय पावन करने लगे। अतीव, अतीव का अर्थ होता अत्यंत, अतिशय, वर्णन से परे, अनिर्वचनीय वृंदावन की महिमा बढ़ गई। पदय और सखाओं के चरण पड़ रहे थे वृंदावन में, गौओं के और कृष्ण बलराम के, तो चक्रतु करने लगे, अति पुण्यम करने लगे। बहुत सुंदर वृंदावन लगने लगा, खास करके श्री कृष्ण के चरण कमल में वज्र अंकुश ध्वज स्वस्ति कमल आदि के चिन्ह हैं। तो श्री कृष्ण जहां भी चल रहे थे तो उनके चरण विन्यास से पता लग जाता था कि कृष्ण का चरण है, इधर गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। और पृथ्वी उन चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती थी। एक आश्चर्य की बात थी कि श्री कृष्ण आगे आगे भी चलते थे और पीछे से सखा कभी कभी चलते थे, गौए चलती थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिट नहीं पाते थे। यह पृथ्वी का स्पेशल सौभाग्य था, वो अपना सौभाग्य सुरक्षित रखना चाहती थी, इसमें भागवत में लिखा गया है कि वो मिट नहीं पाते थे चरण चिन्ह। और ऐसे जनरली श्री कृष्ण पीछे चलते थे, आगे आगे गौए चलती थी और पीछे से चलते थे, इसलिए भी नहीं मिट पाते थे। तो वृंदावन को कहा गया है शास्त्र में कि यह वृंदावन ललाट है इस पृथ्वी का। पृथ्वी यदि एक नारी है, महिला है, तो वृंदावन इसका ललाट है, और उस ललाट पर सौभाग्य का जो बिंदु है वो है कृष्ण, ऐसा कहा गया है। वृंदावन विदम मन्ये भालम एव धरा स्त्रिय सौभाग्य तिलको यत्र, सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको यत्र राजते। यह धरा, यह भूमि, यह एक महिला है, और वास्तव में यह एक स्त्री है, यह एक भू देवी है जो भगवान की प्रिया है। तो यह पृथ्वी एक स्त्री है और वृंदावन इसका ललाट है, इसका फोरहेड है, और उस ललाट पर जो सौभाग्य का तिलक है वो है श्री कृष्ण। सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको यत्र राजते। जो सौभाग्यवती स्त्रियों के ललाट पर तिलक होता है, यह तिलक उनके सौभाग्य का सूचक होता है, इसके पति हैं। आप सभी जानते हमारे भारतवर्ष में प्राय सभी स्त्रियां धारण करती हैं, तो श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी के तिलक हैं। इससे यह भूमि शोभित होती है और वृंदावन इसका ललाट है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं, तो इस तरह वृंदावन को श्री कृष्ण अतिशय पावन करते हैं, घूमने लगे, लीला करने लगे। यह टीका में श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, शुक्लाष्टमी कार्तिके तो स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद दिनात वासुदेव भूत गोप पूर्वस्तु वत्सुप। कार्तिक शुक्लाष्टमी के दिन वासुदेव गोप हुए, पहले वत्सप थे। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रथम दिन प्रवेश किए। यद्यपि वृंदावन में पहले भी प्रवेश किए थे, लेकिन ब्रज के बिल्कुल निकट रहते थे, गांव के निकट आचराते थे, इसलिए उसको प्रवेश के भीतर नहीं कहा। सुखदेव गोस्वामी कहे कि इसके पहले प्रवेश नहीं किए, तो अब प्रवेश कर रहे। गोपै गृणद भीष्टजसो कलान्वितः तस्मिन् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। इस प्रकार सामान्य रूप से श्री कृष्ण बलराम दोनों के वृंदावन प्रवेश की लीला का वर्णन किए। अब श्री कृष्ण का स्पेशल वर्णन कर रहे हैं। तन माधव माधव अपनी बांसुरी को बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तन माधव वेणु उदीरयन गोपह प्रीता, गोप सखा श्री कृष्ण के साथ हैं, श्री बलराम जी भी हैं, और गोप सभी श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं। यह वृंदावन की विशेषता है कि श्री कृष्ण के सखा सर्वदा श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, जो और कोई बातचीत कभी नहीं करते। नया नया श्रृंगार जो कृष्ण करते रहते हैं तो उसी का वर्णन करते हैं, कृष्ण तुम्हारा मुकुट बहुत सुंदर है, तुम्हारी वरमाला बहुत सुंदर है, माता ने यह श्रृंगार धारण कराया है, वो बहुत सुंदर है, ये है वो है। और श्री कृष्ण कोई लीला करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, तो उसका वर्णन करते जाते हैं क्षण क्षण में। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपही स्वजसो गृणत भी, गोप सखा श्री कृष्ण के जस का वर्णन करते जाते हैं। श्री कृष्ण क्षण क्षण में इतने सुंदर लगते हैं कि उनका वर्णन नवीन नवीन लगता जाता है। आप तो ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, है ना, सैकड़ों हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, और किसका वर्णन करते हैं रोज, जड़ जगत का, एक शहर का जब इतना वर्णन हो सकता है। प्राकृत जगत का एक नगर है और उस नगर में रहने वाले लोग कुछ भी कोई डिवाइन गुणों से युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वर्णन करने में रोज रोज हजारों पेपर निकलते हैं, तो फिर अप्राकृत जगत से यदि पेपर निकालना पड़े, भगवान का वर्णन यदि करना पड़े, तो कितना पेपर निकल सकता है रोज रोज। और वास्तव में न्यूज होगा, नया होगा, यह तो ये न्यूज क्या है, तो ओल्ड ससा है, ये सब बातें ओल्ड है। यहाँ ज्यादातर न्यूज पेपर में मरना, चोरी, क्या क्या, यही सब निकलता रहता है। शायद बैकुंठ से न्यूज पेपर निकालना पड़े तो वहां उसमें एक कॉलम में, एक लाइन में भी ये बात नहीं आएगी कि किसी के मरने का या कोई दुख या कुछ भी है कि नहीं, वो पूरा समाचार पत्र आनंद से भरा रहेगा। आज मैं आ रहा था बनारस से बॉम्बे, तो जबलपुर में बहुत भारी भूकंप हो गया, तो मैं देखा उस समय न्यूज पेपर जो भी मिल रहे थे सब में भूकंप का वर्णन, अर्थक्वेक का वर्णन सबसे। तो यही तो इस दुनिया का समाचार है, वही डेड चीजें, मरी हुई चीजें पढ़ते हैं लोग, कोई जीवन नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनका जो धाम है, उनके जो परिकर है, तो नित्य आनंदमय है। है कि इसमें भी बहुत से न्यूज पेपर निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि जब मैट्रियल नगर, मैट्रियल जगत का इतना वर्णन किया जा सकता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और फिर भगवान का वर्णन कितना में किया जा सकता है, सहज समझ सकते हैं। एक कवि ने लिखा है कि यदि इस पृथ्वी को पूरा किसी मिल में, किसी कारखाना में पीस करके कागज बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी को पतला कागज बना दिया जाए, और जितना भी समुद्र है, समुद्र को यदि इंक सिलाही बना दिया जाए, और भगवान के गुणों को, उनके सौंदर्य को, करुणा को, ऐश्वर्य को लिखने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, गणेश, शेषनाग, ये सभी विद्वान लाइन लगा लगा करके बैठे, अथवा अपना अपना कंप्यूटर लेकर अनंत अनंत वर्षों में भी भगवान के गुणों को ये गिनकर शेष नहीं कर सकते हैं। ये सारी पृथ्वी कागज के रूप में खप जाएगी, सारा समुद्र खप जाएगा, लेकिन भगवान के सौंदर्य और करुणा आदि की जो कथाएं हो कभी शेष नहीं हो सकती। इतना अनंत गुण से वे युक्त हैं, तो उनके साथ जो सखा रह रहे हैं वे नित्य गाते रहते हैं उनका जस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कभी कभी हम लोगों से लोग पूछते हैं इस एक ही शब्द की आप लोग इतनी आवृत्ति क्यों करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं अब नया नया क्यों नहीं जपते हैं ये हरे कृष्णा। जब से सुने हैं देखें तो यही ये बोलते रहते हैं, आपका जी नहीं उबता है। ये अउब नहीं सकता क्योंकि वास्तव में यह पूर्ण चिदघन है, स्पिरिचुअल है ये हरे कृष्ण महामंत्र। यह वास्तव में इस संसार की वस्तु नहीं है। जैसे हम लोग रेडियो पर शब्द सुनते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि वो रेडियो यहाँ का, वो शब्द यहाँ का नहीं है। जैसे हम बॉम्बे में सुनते हैं तो दिल्ली से शब्द आता है या लंदन से शब्द जाता है, तो लंदन का शब्द इंडिया में सुनाई पड़ता है। तो यह शब्द कहाँ से आया है? गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्त, यह गोलोक से ट्रांसमिटेड होता है, यह यहाँ की वस्तु नहीं है। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे अन्य शब्द हैं वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी है, भगवान का कोई नाम है, लेकिन वास्तव में यह गोलोक का है। यह दिव्य जगत से ध्वनि आई हुई है, किस लिए? हमको उठाकर वहां ले जाने के लिए। इस तरह से गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लड़की नेता है। शोक की बात है कि रति इसमें नहीं होती है। तो हम लोग बताते हैं कि वास्तव में यह दिव्य वस्तु है, जैसे जीने से कभी ऊब नहीं होती है, हम निरंतर जीना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई अब नहीं सोचता नहीं अब बहुत दिन जी लिया आप क्या चाहते हैं। जीने से कोई ऊब रहा है नहीं? भौतिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल मैटेरियल एक्टिविटीज है, उनसे भी हम नहीं उब रहे हैं। रोज खाना, रोज शरीर धोना, नहाना, इससे भी नहीं उब रहे हैं। जीने से कहां से उबेंगे? तो श्री कृष्ण जीवन के भी जीवन है, आत्मा के भी आत्मा है, चेतनश चेतनानाम, चेतन के भी चेतन है। तो उनके जो गुण नाम है वो नित्य फ्रेश रहते हैं। भगवान शेषनाग तो अनादि काल से उनका गुण गाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुण नित्य नए नए लगते हैं। भगवत गीता वही है लेकिन आज भी नया नया फ्रेश है वह। दूसरा न्यूज पेपर खरीदेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद बासी हो जाता है ना, स्टेल। यहाँ तो मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, तो मॉर्निंग वाला मिड डे में बासी हो गया, मिड डे वाला संध्या को बासी हो गया, और फेंकते जाते हैं। रद्दी कागज के भाव कोई नहीं लेना चाहता, फेंकते जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के गुण नित्य नवीन है। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था एक बार भारतवर्ष में कि भगवान कृष्ण के सखा श्री कृष्ण में क्या पाते हैं कि रात दिन उनकी कीर्ति गाते रहते हैं। जब भी भागवत में वर्णन पाएंगे कृष्ण के सखा कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते हैं, हमेशा गाते रहते हैं। कोई सौंदर्य की बात कहता है, कोई उनके करुणा की, कोई किसी लीला की, कोई किसी लीला की, हमेशा वर्णन करते रहते। तो यहाँ पर ये वर्णन आ गया, स्वजसह गृणद भी, श्री कृष्ण के यश को गोप सखा गाते चलते हैं, बलान्वित श्री बलराम जी के साथ। पशुन पुरस्कृत पशव्यम आवश्यक। तो श्री कृष्ण पशुओं को आगे करके पशुन पुरस्कृत पुरह मतलब सामने आगे करके पशव्यम आवश्यक चरागाह में वन में प्रवेश करते। भगवान श्री कृष्ण की यह वन प्रवेश लीला बहुत मधुर है और सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस लीला का हाथ है। श्री कृष्ण के दो गुणों ने आकृष्ट किया सुखदेव गोस्वामी को। एक तो उनकी करुणा, पूतना का जो उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, तो उस लीला की याद करके उसका श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए। अहो बकी यम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाये दप्य साधु लेभे गतिम तृषितांत तुण्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजे। श्री कृष्ण के विरह में उद्धव जी यह श्लोक बोले हैं कि पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने गई थी, लेकिन ऐसी क्रूर हृदया पूतना को भी जिन्होंने माता यशोदा की गति दे दिया, उन कृष्ण से पढ़ करके कौन दयालु है जिसकी शरण मैं लूं। अब इस दया की कोई सीमा है? श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी पूतना। जिस दिन कंस के हाथ से वो योग माया दुर्गा उड़ गई, तो उसने आकाशवाणी किया, उसने सामने से बोला कि कंस तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस उसके बाद देवकी वसुदेव को छोड़ करके मीटिंग किया अपने मंत्रियों के साथ, आधी रात को मीटिंग बुलाया फोन करके, जैसे भी सभी मंत्रियों को बुलाया, कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया। कौन जन्म लिया? तो मेरी इष्ट देवी ने जन्म ले लिया, तो मेरी इष्ट देवी दुर्गा जी ने जन्म लिया है, और उसने कहा है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। दुर्गा जी ने भी छिपा करके कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी जेल में और एक दो घंटा पहले जन्म लिया है उन्हें कहीं पर जन्म ले चुका है तुम्हारा पूर्व शत्रु। तो कंस मीटिंग किया मंत्रियों से, ऐसे मंत्रियों से जो बिल्कुल बुद्धू थे, वो कुछ नहीं जानते थे, उनसे पूछा क्या करना चाहिए हमें, हमारा बैरी जन्म ले चुका है। तो उन दुर्बुद्धि मंत्रियों ने यह सलाह दिया, जब आपको मारने वाला जन्म ले चुका है तो कितने दिन का होगा लगभग? तो कंस कहा कि होगा क्या, हो सकता है 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 10 दिन के अंदर का हो। तो मंत्रियों ने कहा अरे अधिक से अधिक 1 महीने का, यही ना ठीक है, एक काम किया जाए, इस पूरे ब्रजमंडल में या मथुरा जिले में जनपद में जितने भी बच्चे 1 महीने के अंदर के जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए, बस उसी में से होगा एक। तो 6 बच्चों को मारने के कारण कंस रो रहा था देवकी वसुदेव के सामने, उनको जेल से मुक्त किया और अपने पाप की बात कह करके रो रहा था कि मैं बहुत बड़ा पापी, और मंत्रियों के साथ में पढ़ा तब यह योजना बन गई कि 1 महीने के भीतर के जितने बच्चे हैं सबको मार देना चाहिए। कुसंग से ऐसा हो गया। अच्छा, तो क्या उपाय किया जाएगा बच्चों को मारने का? जब उनकी मीटिंग चल रही थी तो पूतना ने कहा, पूतना चिल्ड्रन किलिंग कमीशन का अध्यक्ष बनी, वो अध्यक्ष बन गई और उसने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत माया जानती हूँ, कपट जानती हूँ, मैं अपने स्तन में हलाहल जहर लगा करके जाऊंगी और बस दूध पिला पिला कर बच्चों को मार दिया करूंगी और किसी को जाने की जरूरत नहीं। तो कंस ने कहा ठीक है। कंस ने यह कहा कि सबसे पहले तुम्हें ब्रज में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नंद है यह वसुदेव का मित्र है, भाई है, और मैंने सुना है कि उसके पास भी उसको एक बच्चा हुआ है इसको खबर लग जाती थी, मैं ऐसा सुना हूं कि उसको भी एक बच्चा हुआ है, तो कहीं वही मेरा शत्रु ना हो। तो वसुदेव का पुत्र बनने वाला था विष्णु, तो हो सकता है वसुदेव का न बन करके नंद का बन गया हो। इस तरह से उसको शंका हो रही थी। उसने भेजा था स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे करके पूतना को, तो पूतना गई। कितना क्रूर हृदय था, बहुत सुंदर वेश बनाई लेकिन हृदय छुरे की धार के समान तीखा था उसका। और रोहिणी जसोदा दोनों वहीं पास में थी, और जा करके कहने लगा कितना लाला सुंदर है, कितना अच्छा है, कह करके उठा ले, गोद में उठा ले। उन लोगों ने मना नहीं किया और अपना विस्मय स्तन देने लगे पीने के लिए। श्री कृष्ण पीने लगे, छोड़े नहीं, और प्राण के साथ ही पिए। लेकिन मरने के बाद पूतना को माता की गति मिली, नित्य लीला में भगवान ने उसे अपनी माँ बना लिया। यह है श्री कृष्ण का दान। तो वहां पर कैमुत्य न्याय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विष युक्त स्तन देकर पूतना माता की गति पा गई, उसी श्री कृष्ण को जो श्रद्धा से कुछ देते हैं उनके शुभ गति में क्या संदेह हो सकता है। आज कोई श्री कृष्ण को कुछ लाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम या जीवन वचन जो कुछ भी है अर्पित करते हैं श्रद्धा से, हम श्री कृष्ण के सेवक हैं और श्री कृष्ण को अर्पण करना हमारा धर्म है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। श्रद्धा से यदि कोई कृष्ण को कुछ देता है तो वह क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में जाएगा, जबकि विष दे करके वो माता की गति पा गई। तो यह है श्री कृष्ण की कृपा, सहज कृपा है, कृपा के समुद्र है। अन्य जीवों में जो कृपा होती है वो एक कृपा का एक बोतल भी नहीं है, और श्री कृष्ण कृपा के समुद्र है। वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि हम लोगों में जो कृपा है कितनी है। एक सीख को लेकर के आप किसी लोटा में डालिए, सीख समझते हैं सीख, हाँ एक एक्स्ट्रा तीर्ण को लेकर के एक लोटा के पानी में डालिए और उसको लेकर के आप ऐसे छिड़किए तो उसके हजार हजारों कण बनेंगे, सहस्रों कण बनेंगे। तो एक कण जो है उतनी ही कृपा हमारे हृदय में है, और भगवान के हृदय में कितनी कृपा है अनंत समुद्र के समान है। हम तो देखे हैं कभी कभी इस जगत में अपना पिता भी क्रोधित हो जाता है अपने बेटा पर, बेटे पर भी कृपा नहीं रह पाती। कभी कभी अपनी पत्नी से भी आदमी कहता है बस इस समय चुपचाप बैठो, हमसे बोलो मत, अच्छा नहीं लग रहा है, कृपा सूख गई कृपा भरा नहीं रहा है हृदय में, स्नेह इस तरह सूख जाता है वास्तव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्नेह है जीवों के प्रति, सुहृदम सर्वभूतानां, अनादिकाल से उनकी कृपा बनी हुई है। यहाँ तक कि भगवान को कोई माने या मत माने लेकिन सबको हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं, यहाँ तक कि निराकार कहने वालों को भी वो पानी दे रहे हैं पीने के लिए या भोजन करने के लिए दे रहे हैं, कि नहीं। भगवान सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति हैं लेकिन इनके विषय में यहाँ से निराकार कहते हैं, को निराकार उनको भी सूरज का प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये है उनकी करुणा। जानते हैं कि ये पागल है, हमारे विषय में गलत बोल रहा है लेकिन करे क्या पिता है, और पिता के प्रति पुत्र यदि हीन वाक्य भी बोले तब क्या कहे। कोई पुत्र है और अपने पिता के विषय में कोई पूछे, उसके पिता के विषय में कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो वो कहते वो तो निराकार है निराकार कह देने से अब उसको प्रणाम नहीं करना पड़ेगा, भोग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि निराकार तो खाएगा पिएगा नहीं है कि नहीं, तो इसलिए ये भक्ति से पूजा से पिंड छूट जाएगा और केवल ध्यान का एक नाटक चलता रहेगा कि ध्यान कर रहे ध्यान ध्यान कर रहे। ऐसे ही माँ ने जिस दिन जन्म दिया था तुमको और केवल ध्यान करती तुम्हारा तो पालन पोषण हो जाता ना आज माता पिता कहें अपने बेटे के लिए कि हम तुम्हारा केवल ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। वास्तव में इन लोगों ने इस जगत में भक्ति का सत्यानाश कर दिया है। जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, भगवान के प्रति प्रेम इन लोगों ने खंडित कर दिया है। निराकार वस्तु से कौन प्रेम करता है, कोई नहीं। आज यहां मान लीजिए हम बैठे हैं कि कोई खबर दे कि आपकी पत्नी निराकार हो गई आज से। तो निराकार हो गई तो हो गई, अब क्या, जब तक साकार थी तब तक प्रेम था, है कि नहीं? जब निराकार हो गई तो अब क्या है? जिन लोगों को वास्तव में भक्ति नहीं करनी है, भगवान से कोई संबंध नहीं रखना है, वास्तव में जो पागल है, एक प्रकार के बहुत ग्रॉसेस्ट इग्नोरेंस है, वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। ये समझ लीजिए निश्चित, उनका कोई प्यार नहीं है कृष्ण, कोई संबंध नहीं, वे भगवान के दिव्य स्पिरिचुअल फॉर्म को, लीला को, नाम को समझते ही नहीं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और सबसे पहले जब करुणा का वर्णन किया जाता है तो भगवान की लीला आती है, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये करुणा की लीला सुना, और इसके बाद बरहा पीडम नटवर वपुर कर्ण यो कर्णिकारम विभ्रवास कनक कपिसम वैजयंतीम जमालाम रंध्रान वेणो रधिर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद कमलम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, बांसुरी के छिद्रों पर अपनी उंगली फिरा रहे हैं, और बांसुरी को अपने अधरामृत से सिक्त करके पूरे विश्व का आलिंगन कर रहे हैं। उस नाद ब्रह्म द्वारा सखा कीर्ति गा रहे हैं और झूमते हुए नाचते हुए कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस सौंदर्य ने सुखदेव गोस्वामी को खींच लिया, श्री कृष्ण के इस सौंदर्य ने और करुणा ने, दो श्लोकों ने उनको बाध्य कर दिया भागवत पढ़ने के लिए। लौट करके आए और भागवत पढ़े। ये है वृंदावन प्रवेश की लीला। पशुओं को आगे करके श्री कृष्ण लौट वन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे साधे श्री कृष्ण प्रवेश नहीं करते हैं, नाचते हुए प्रवेश करते हैं। अस्तम वृंदावन बिहारी कृष्ण और द्वारका बिहारी या मथुरा बिहारी या साकेत बिहारी जैसे सीधे साधे नहीं चलते हैं, चलते हैं इधर देखते हैं इधर, नाचते हुए झूमते हुए, खड़े भी होते हैं तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित कहते हैं, है ना? हम लोगों के कोई भी ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें कृष्ण सीधे खड़े हैं, त्रिभंग सुंदर, ग्रीवा टेढ़ी, पैर व्यत्यस्त, पाद दाहिना पैर बाएं भाग में है, बाएं पैर दाएं भाग में है, ऐसे खड़े रहते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, उसी तरह से उनकी भाषा भी टेढ़ी, उनकी पाग भी टेढ़ी, ग्रीवा टेढ़ी, उनकी लीला टेढ़ी, झूमते हुए नाचते हुए प्रवेश करते हैं। तो प्राविशद आविशद किस लिए प्रवेश किए वृंदावन में? विहर्तु कामः, विहार करने की लालसा से। वृंदावन इतना महान है, इतना मादक है कि श्री कृष्ण को भी उसमें रमने की इच्छा होती है। रमण का अर्थ है कि वृंदावन में खेल करके, अवगाहन करके, घूम करके श्री कृष्ण को भी सुख मिलता है। जो सुख घन है, आनंद घन है, आनंद जिनसे विकीर्ण होता है, सबको प्राप्त होता है। परमानंद घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन में प्रवेश करके आनंदित होते हैं। इससे वृंदावन की महिमा समझनी चाहिए कि भगवान को भी सुख देने वाला धाम है वृंदावन। तो विहर्तु कामः, विहार करने की लालसा से श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कथम भूतम वनम, वृंदावन कैसा है? सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं, कुसुमाकरम, कुसुमा नाम आकरम, जहाँ पुष्पों का, पुष्पों की राशि है, आकर खजाना है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में सब जगह पुष्प ही पुष्प है। पुष्प को संस्कृत में कुसुम भी कहते हैं। तो कुसुम आकरम, आकर मतलब खान, सब तरह के पुष्प वृंदावन में। आज जो लोग वृंदावन में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो वहां पुष्प नहीं है इस समय, लेकिन जिनको आंतरिक दृष्टि प्राप्त है, आज भी वृंदावन में देखते हैं कि वो समृद्ध है पुष्पों से, चिंतामणि भूमि है, सब कुछ चिन्मय है वास्तव में। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो सब जगह कुसुम ही कुसुम, कुसुम ही कुसुम है, गोपों से घिरे हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों हल लिए रहते हैं कंधे पर, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गोचारण के इंचार्ज थे, गौओं के रक्षक, और श्री बलराम जी फार्मिंग खेती करते थे, ये हल लिए रहते हैं इसलिए हलधर ये खेती करते थे। लेकिन जो भी हो प्राय श्री कृष्ण के साथ वन में प्रवेश करते थे। तो दो बार यह बात कही गई है कि श्री कृष्ण वृंदावन में खेलने के लिए, रमने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर पुनः वृंदावन का वर्णन करते हैं। तन्मन जुघोषाल मृग द्विजाकुलम महन मन प्रख्यपय सरस्वता। तन्मन जुघोषाल मृग द्विजाकुलम, वह वृंदावन मंजू घोष वाले, बहुत सुंदर कंठ वाले भावरे मृग और पक्षियों से व्याप्त था। वृंदावन में सब जगह भावरे थे, फूलों पर बैठे हुए थे और भावरे भन 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 गाते रहते। भावरों में भगवान ने एक अद्भुत विशेषता दी है। भावरों के जो पंख होते हैं, जिन लोगों ने देखा होगा वे समझ सकते हैं, वो जब उड़ते हैं तो हारमोनियम के पत्ती जैसे उसमें से आवाज निकलती रहती है, एक एक भौंरे के, और उसके साथ वे गाते भी हैं। भौंरे भ्रमर एक ऐसे जीव हैं जिनको भगवान ने वाद्य और सुंदर कंठ दोनों दिया है, ये बहुत सुंदर गाते रहते हैं भौंरे और मृग। मृग का अर्थ पशु होता है अथवा हरिण, ये भी बहुत सुंदर बोलते हैं। वृंदावन में जो भी पशु हैं बहुत सुंदर बोलते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ होता है पक्षी, अनेक प्रकार के कोयल हंस आदि पक्षी हैं जो गा रहे हैं वृंदावन में। अभी वृंदावन भारतवर्ष में बसंत ऋतु चल रहा था इस वैशाख पूर्णिमा तक, तो सब जगह कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, कुहू कुहू। इधर कोयल होती है ना कि नहीं? इधर कोयल नहीं, हाँ, क्योंकि मैं सुना नहीं। और उधर कहीं भी कोयल बोलती है, कुजत कोकिल हंस सारस नरा किरणे मयूरा खुले। और मयूर, मयूर भी नहीं दिखाई पड़ते हैं इधर, है कहीं कहीं है मयूर, कोयल, दात्यो, पपीहा, ये सब गाते रहते हैं बहुत सुंदर कंठ। और वृंदावन के वन में रहने वाले पक्षियों का तो कहना है, तो पक्षी को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, एक बार ये अंडा के रूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा को फोड़ करके जन्म लेते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। मनुष्यों में जिनका उपनयन संस्कार होता है तो उनको द्विज कहते हैं, पर पक्षियों को बिना उपनयन संस्कार कहीं द्विज कहा है। और पक्षियों में एक नियम बहुत अच्छा है कि कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि पक्षियों में स्वदार संग्रह का नियम बहुत अच्छा है। स्वदार संग्रह मतलब पत्नी और पति का बहुत दृढ़ संबंध है। पक्षी जगत में व्यभिचार नहीं है, एक पक्षी एक मादा पक्षी से संतुष्ट रहता है बस, और उनमें व्यभिचार नहीं है। शास्त्र कहता है वृंदावन के जो पक्षी हैं, इन पक्षियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर संबंध है। एक तो दिन भर जहां भी जाते हैं तो भावरों के साथ गाते रहते हैं, कभी कभी कोयल के कंठ में मिला करके कंठ और कुहू कुहू भी करते रहते हैं, और मोर का तो पंख ही धारण करते हैं या मोर जैसे नाचते भी हैं। तो इन पक्षियों का, पशुओं का, हरिण आदि का और
अली, अली माने भावों के समूह का वर्णन, इन सबसे आकुलम वृंदावन व्याप्त है। और महात्मन प्रख्य पय सरस्वता वाते न जुष्टम सतपत्र गंधिना, और वृंदावन में वायु कैसा फैला है, कैसा वातावरण है, मंद शीतल और सुगंध हवा, सुगंधित हवा है। शीतल का यहाँ अर्थ है समशीतोष्ण, न गर्मी है और न ज्यादा ठंडा है, अधिक ठंडा नहीं अधिक गर्मी नहीं। ये शरद ऋतु का वर्णन है, कार्तिक महीने का। तो वृंदावन के सरोवरों का जल बिल्कुल निर्मल है, निर्मल मलहीन बिल्कुल स्वच्छ जल है। कैसा जल? जैसे महात्माओं का मन, महन मन, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मन में कोई मल नहीं होता है, जितना महात्माओं का मन शुद्ध होता है उतना ही वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनका जो जल है बिल्कुल निर्मल है। कैसा? जैसे किसी संत का, किसी भक्त का मन शुद्ध रहा। ये सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं, जिनके हृदय में केवल कृष्ण का प्रेम है, स्नेह है और संसारी कोई कामना नहीं है, उनके हृदय को कहा जाता है बहुत शुद्ध है, श्री कृष्ण का रस भरा हुआ है। वृंदावन के सरोवरों के जल का तुलना, उपमा दे रहे हैं महात्माओं के मन से। महन मन प्रख पय सरस्वत, इतने शुद्ध जल है और उन शुद्ध जल में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं अनेक प्रकार के। कार्तिक का महीना है, वातावरण ऐसा है, इतना सुंदर जल खिला हुआ है, सुंदर कमल खिला है और कमल के पुष्पों के पराग को लेकर के हवा बह रही है। तो सरोवर के जल से टकरा करके और कमल के पुष्पों से टकरा कर हवा चल रही है, तो हवा में सुगंध फैली है, संपूर्ण ब्रज भूमि की हवा में सुगंध है। कैसी सुगंध? कमल पुष्प की सुगंध है, कमल के पराग की सुगंध। तो सुगंधित हवा है और समशीतोष्ण हवा है और मंद समीर, धीरे धीरे हवा चल रही है। हवा जोर से चलती है तो अच्छी नहीं लगती है ना, मंद समीर अच्छा माना जाता। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। हवा को कहा गया है सतपत्र गंधिना, ऐसे कमल हैं जिनको सतपत्र कहा जाता है। सतपत्र का अर्थ होता है जिसकी पंखुड़ियों में सौ सौ पत्ते हों। इधर हम लोग जो कमल देखते हैं उसमें सौ नहीं होते, अष्टदल कमल कभी कभी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कमल बनाए हैं प्रभुपाद सेंटेनियर में, तो से कितने पेटल्स हैं? 10 से 12 पेटल्स हैं। लेकिन वो पेटल 100 होते हैं, एक ऐसा कमल होता है जिसको सतपत्र कहते हैं, 100 पेटल्स और सतपत्र। तो ऐसे लोटस कमल वृंदावन के सरोवरों में खिले हुए और उनसे स्पर्श करके हवा फैल कर पूरे वृंदावन को सुवासित करती, बहुत सुंदर है गंध हवा में। तो ऐसी हवा का आस्वादन करते हुए भगवान घूम रहे हैं। निरीक्ष रंतुम भगवान मनोदत है, भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन में रमण करने की इच्छा से घूम रहे हैं। तो अब वृंदावन वासियों का वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी का वर्णन कर लिए। उसे श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसका वर्णन बाद में आएगा और पहले भी आ चुका है। श्री कृष्ण के बांसुरी वादन का वर्णन किया गया, लेकिन सिर पर मोरपंख है और बहुत स्पेशल श्रृंगार है आज के दिन, और आज श्री कृष्ण को माना जा रहा है कि अब कुछ बड़ा हो गया है, तो स्पेशल श्रृंगार है, स्पेशल वस्त्र है और घूम रहे हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया प्रस्फल प्रसूनोरुभरेण पादयः स्पृशन् शिखान् वीक्ष वनस्पतिं मुदान् स्मयं निवाहाग्रजमादिपुरुषः। आदि पुरुषः श्री कृष्णः तत्र तत्र स्थाने स्थाने सर्वत्र आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सखाओं के साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जहां वे जा रहे हैं वहां पर वृक्ष की शाखाएं झकझुक कर कृष्ण को प्रणाम कर रही है। वृक्ष झुक जाते थे, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनमें फल और फूल लगे हुए थे, जो श्री कृष्ण के निकट आते ही झुक जाते थे कि श्री कृष्ण हमारा फल लेंगे, हमारा पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर अपना श्रृंगार करेंगे, फल लेकर के खाएंगे और श्री कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। इस दृश्य से वृक्ष झुक रहे थे। स्पष्ट शब्दों का वर्णन है कि फल प्रसून्न रूप भरेण पादयो स्पृशत, ऐसे वृक्षों में जब फल लगता है या फूल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, लेकिन वृंदावन के वृक्ष तो झुके हुए हैं ही, परंतु श्री कृष्ण और बलराम के आने पर वे विशेष झुक जाते हैं चरणों में, क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो चिन्मय हैं और श्री कृष्ण के नित्य परिकर। तो श्री कृष्ण जहां जहां जाते हैं उनको फल और फूल देने के लिए झुक जाते हैं। तो ज्यादा ऊंचे रहेंगे तो कृष्ण फल तोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह वृंदावन में श्री कृष्ण को फल प्राप्त होता है। वास्तव में वृक्षों के साथ भगवान की भक्ति का बहुत संबंध है। श्री कृष्ण गीता में जो मांग कर रहे हैं कि हमें अर्पण करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसमें तोयम को छोड़ करके बाकी तीन वृक्षों के उत्पादन, पत्रम पुष्पम फलम, ये वृक्षों से आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फल, ये पुष्प, ये वृक्ष से आए है ना। कोई आदमी ऐसा उत्पादन नहीं कर सकता, करते भी हैं प्लास्टिक का तो उसमें कोई गंध नहीं कुछ नहीं, और वो भी करते क्या है, भगवान की वस्तुओं को लेकर के ही वे उत्पादन करते हैं, स्वयं नहीं बना सकते है ना। कोई प्लास्टिक अपने भीतर से तो निकाल नहीं सकता है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो कुछ भी, प्लास्टिक का भी फूल बनाना हो तो वो भी कहीं बाहर से ही लेना पड़ेगा, रंग लेना पड़ेगा। ये भगवान की अजीब सृष्टि है, कई तरह का फूल बनाए हैं और अलग अलग रंग, एक 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 ही फूल में कई रंग होते हैं। देखिए पीला पुष्प है, हरा है, एक ही पुष्प में हरा रंग भी, पीला रंग भी, लाल भी, एक ही जमीन से ऐसे हजारों हजारों प्रकार के रंग हैं, स्वाद हैं, सब धरती से निकल रहे हैं। ये सब भी भगवान देते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की भक्ति का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ, और आचरण का भी, भक्त के आचरण का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरो रिव सहिष्णुना, चाहे तरो रपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए और ऐसे कीर्तन करना चाहिए। तृणादपि सुनिचन, तृण भी एक वृक्ष का ही अंग है, ये घास है, उससे ज्यादा नम्र होना चाहिए। भगवान भी जब इस जगत में आते हैं वैष्णवता सिखाने के लिए तो उनको वृक्षों से ही सीखना पड़ता है। देखो वृक्ष जैसा बनो, तृण जैसा बनो, ये आदमी जैसा बनो भगवान ने कभी नहीं कहा है। आदमी जो सब बेकार होते हैं उनसे क्या सीखना है, वृक्ष जैसा रह करके कीर्तनी और सदाहरी। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इस राजा जैसा बन करके या संसद जैसा बन करके भजन करो, ये करो, वृक्ष जैसा बनो। भगवान श्री कृष्ण की लीला का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ है, वृक्षों से, पशुओं से बहुत संबंध है भगवान का। तो जहां जहां जाते हैं तो सबसे पहला सौभाग्य वृक्षों को दे रहे हैं, वृक्ष झुक जाते हैं। तो सब जगह वृक्ष हैं, सब जगह झाड़ हैं और झुक जाते हैं। कैसे वृक्ष झुक रहे हैं, अरुण पल्लव स्त्रिया, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है, बड़े बड़े सुंदर है, किस तरह से लाल लाल पत्ते निकले हैं, नए नए कोंपल है, नए नए पत्ते निकले हैं, लाल होते हैं, उससे उनकी शोभा बहुत सुंदर बढ़ी हुई है। और फल प्रसून उरु भरेणा, फल और प्रसून, फल मतलब फ्रूट्स और प्रसून मतलब फ्लावर्स पुष्प, फल और फूल से भरे हुए इतना भार है वो झुकते हैं। और उरु भरक, भरक का संस्कृत में अर्थ होता है उपहार, उपहार देते हैं, अपने सिर पर फल और पुष्प का भार लिए, उपहार लिए और झुकते हैं। कहाँ? पादयो, श्री कृष्ण के जुगल चरण में झुक रहे हैं। पादयो स्पृशत, श्री कृष्ण के चरण कमल का वे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। शिखान, जिनकी शिखाएं, जिनका ऊपरी भाग श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना अधिक वृक्षों को झुकना पड़ता होगा, झुकने में उनको आनंद हो रहा है। जहां कृष्ण जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी तत्काल झुक जाते हैं, और कभी कभी दोनों तरफ से वृक्ष झुकते हैं तो श्री कृष्ण के गति में अवरोध हो जाता था, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। वो झुकते हैं इसलिए कि कुछ तो पुष्प अर्पण कर देते थे वे स्वयं ही, और कुछ को चाहते थे कि श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श मिलना चाहिए, श्री कृष्ण के कर कमल का स्पर्श लेने के लिए पुष्प निकट आते थे। वृक्ष ऐसे सचेतन हैं, स्पिरिचुअल हैं वृंदावन के, तो श्री कृष्ण के हाथों के पास पुष्प आ रहा है तो श्री कृष्ण तोड़ते थे, पिकअप करते थे और कहते थे श्री बलराम से, कितना सुंदर वृक्ष है, कितना सुंदर पुष्प है, इस गंध को सूंघिए। भगवान सूंघते थे, श्री बलराम जी को सूंघाते थे ऐसे सब, और किसी किसी सखा से कहते हैं कि इसके पुष्प तोड़ लो और माला बनाने लायक है, इसे बनमाला बननी चाहिए। कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जिसके पुष्प को भगवान ने स्वीकार न किया, क्योंकि वे सबके हृदय की बात जानते हैं। तो वृंदावन के वृक्षों का पुष्प चयन कर रहे हैं। और फल, श्री कृष्ण को फल है, दुकान से भोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ब्रज में। अब तो इधर फल मिलते हैं, कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और कैसे कैसे ढंग से पकाते हैं, तो कोई स्वाद नहीं होता है। डायरेक्ट वृंदावन में वृक्षों से पुष्प स्वीकार करते हुए अपने अग्रज से इस प्रकार बोलते हैं। श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए पशु आ रहे हैं, हरिण आ रहे थे, वृक्ष आ रहे थे, भंवरे गा रहे थे, पक्षी गा रहे थे, जहां जहां कृष्ण चल रहे थे तो वृंदावन के सभी पक्षी उड़ उड़ करके उनके साथ चलते थे, शाखाओं पर, कोई ऊपर कोई वृक्ष की शाखाओं पर, और कुछ पशु साथ साथ चलते थे, हरिण आदि भंवरे गाते हुए चलते थे। तो इन सब को देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने मन के भावों को श्री बलराम जी से व्यक्त कर रहे हैं। कोई हमारे हमसे प्रेम कर रहा है तो मेरा मनोभाव क्या है वो भी जानना चाहता होगा, कि वृक्षों की सेवा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हरिण के विषय में क्या उक्ति है, भंवरे के विषय में, मयूर के विषय में। तो श्री कृष्ण बलराम जी से इस प्रकार बोलते हैं, समस्त ब्रजवासियों के मतलब चर और अचर सबके प्रेम भाव को अनुमोदित करते हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं, ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान चार श्लोकों में श्री बलराम जी से बातचीत कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, अहो यमी देव वरा मरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मना तमोपहत्यैतरुजन्मजत्कृतम्। श्री कृष्ण के चरणों में वृक्ष फल फूल अर्पित कर रहे हैं, इसको श्री बलराम जी के लिए कह करके अभिनंदन करते हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं हे देव, हे देव वर, हे समस्त देवताओं के पूज्य, आप देखिए ये वृक्ष आपके पादाम्बुज में फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। कर तो रहे हैं कृष्ण को, लेकिन यह प्रेम की रीति है। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि अहेर युवा गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवत, प्रेम की जो गति है, प्रेम की चाल जो होती है वो सांप की चाल के समान टेढ़ी होती है। सांप चलता है तो सीधा नहीं चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई देखे, सांप ऐसे टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। तो प्रेम की गति टेढ़ी होती है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि ये वृक्ष मुझको फल और पुष्प दे रहे हैं, ये बलराम जी को दिखा करके कह रहे हैं कि हे देव, हे देवताओं के पूज्य, देखिए ये वृक्ष आपको फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में भगवान अपने प्रेम भाव व्यक्त कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्पण कर रहे हो, मैं तुम्हारे इस प्रेम भाव का आभारी हूं। वृक्षों के प्रति भगवान अभिनंदन कर रहे हैं। यही है पद्धति। हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मान लीजिए उसके पास उसका पुत्र है, तो ये पूछा जाए ये किसका पुत्र है, तो आदमी है कहता आपका पुत्र है, यही उत्तर दिया जाता है, ये आपका घर है, आपकी कार है, आपका ये है, इस तरह से ये व्यक्त करने की विधि है। सीधे इस तरह से नहीं कहते सब मेरा है इस तरह से कहने की पद्धति नहीं है। एक ही बात के लिए आपका है नहीं कहा जा सकता है एक बार ऐसे विनोद में कहा था, सबको कह देंगे कि आपका है, आपका, अपनी पत्नी को नहीं कहेंगे कि बस बाकी और सब आपका है ये व्यवहार में इस तरह का वर्णन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के प्रेम भाव का अभिनंदन कर रहे हैं श्री बलराम जी के लिए कह करके कि हे देवताओं से भी पूज्य, आपके जो चरण कमल हैं इनकी आराधना ब्रह्मा जी करते हैं, अमर देवराज इंद्र करते हैं, ये शिव जी करते हैं, आपके चरण कमल की पूजा, मतलब मेरे चरण कमल की पूजा, ये भाव समझना चाहिए। लेकिन भगवान ये कैसे कहे कि हमारे चरण कमल की पूजा ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुशील व्यक्ति हैं, बहुत गुणवान, कभी नहीं कहते हैं कि मैं पूज्य हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और बड़ा भाई तो पूज्य है ही, तो अपनी पूजा को, भावना को बलराम जी के लिए कह करके व्यक्त करेंगे, देखिए ये वृक्ष आपको फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हीं चरणों में जो चरण ब्रह्मा शिव आदि के पूज्य नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मन स्तमोपहत्ते तरुजन्म जत्कृतम। हे देव, देखिए ये अपनी शिखाओं से, अपनी शाखाओं से आपके चरणाम्बुज में नमन्ति, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और केवल प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, देखिए आपको सुमन फलार्हणम, आपको सुमन और फल अर्पित कर रहे हैं। इनके पास जो कुछ भी धन है ये सारा धन आपको अर्पित कर रहे हैं। वास्तव में वृक्ष के पास क्या धन है, फूल और फल यही धन है वृक्ष, तो अपना धन आपको अर्पित कर रहे हैं, धन्य है इनका जन्म। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बात कह रहे हैं कि इन वृक्षों के हृदय में एक बात का दुख है कि इनको वृक्ष का शरीर क्यों दिया गया। वास्तविक बात तो यह है कि वे नित्य मुक्त जीव हैं और भगवान की सेवा के लिए ही वृक्ष बने हैं। अप्राकृत जगत में एक विशेषता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जब चाहे तब चर या अचर शरीर ग्रहण कर सकता है। यदि कोई भक्त चाहता है कि मैं वृक्ष बन जाऊं तो तत्काल बन सकता है, क्योंकि वो चिन्मय देह होता है, चित्त में, इच्छा में, और श्री कृष्ण हमारी शाखा में झूला झूले तो वृक्ष हो जाएगा। ये कोई ये सोचे कि मैं दूब बन जाऊं, श्री कृष्ण मुझ पर बैठे तो बन जाता है। ये हम लोग इस समय चाहें कि हम वृक्ष बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, है ना? या कोई वृक्ष चाहे कि हम घूमे आदमी जैसा तो नहीं घूम सकता है। जड़ जगत में हम लोग बाध्य हैं, पर अप्राकृत जगत में पक्षी मनुष्य के आकार में हो सकता है, मनुष्य पक्षी बनकर सेवा कर सकता है, वृक्ष बनकर सेवा कर सकता है। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो भी चिन्मय परिकर हैं भगवान के, और वे स्वेच्छा से वृक्ष बने हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, पत्र पुष्प अर्पित करने के लिए। लेकिन बनने के बाद अब उन्हें एक विषय में चिंता है कि ओहो, जैसे सखा घूम रहे हैं कृष्ण के साथ, जैसे पक्षी घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, वैसे हम घूम नहीं पाते हैं इनके साथ, हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो श्री कृष्ण लीला करते हुए चले जाते हैं और जो वृक्ष जहाँ है वहीं पर घूम रहा है, वहीं पर अस्थिर है, घूमता नहीं, तो उसको अनुताप है। तो भगवान कहते हैं कि जिस अपराध के चलते इनको वृक्ष का शरीर मिला हुआ है, उस अपराध से मुक्ति पाने के लिए आपके चरण कमलों में नमस्कार कर रहे हैं, इन पर दया कीजिए, आप इनको अवसर दीजिए कि आपकी अन्य लीलाओं में भी भाग ले सके। तो भगवान ने एक प्रकार से वृक्षों को आश्वासन दिया कि मेरे प्रिय वृक्षों, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, मैं तुम्हारी सेवा को जानता हूं, और तुम्हें बाद में अवसर दिया जाएगा, तुम सचल होकर के मेरी लीला का आस्वादन करोगे। ये भाव ये वृक्षों का अभिनंदन कर रहे हैं और फिर भंवरों का कर रहे हैं। जहां जहां श्री कृष्ण चलते हैं वहां वहां भंवरे गा रहे हैं, भन 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 भन। तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम से कहते हैं, एते लीनस्तव जसो अखिल लोक तीर्थम गायन्तयादि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं बने बिन जहातन घात्म दैवम। हे देव, ये भौरे जानते हैं कौन है? ये मुनि है, ये सब मुनिगण है, ये मुनि है, आपके भक्त हैं, और आपका साथ करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए भौरा बने हुए हैं। मुनि के रूप में तो मुनि लोग कृष्ण के साथ चल नहीं सकते थे, एक गोप के साथ कैसे मुनि लोग घूम सकते थे? तो समस्त मुनि नारद आदि मुनि भौरे के रूप में बन करके श्री कृष्ण के वनमाला पर या इधर उधर घूम रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पहचान रहा हूँ आप लोग कौन है। तो श्री बलराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अखिल जीवों को तारने वाले आपके जस को गाते हुए ये भौरे आपके साथ चल रहे हैं, ये प्रायो मुनिगणा, ये सब मुनि भवदीय मुखिया, आपके सेवकों में मुख्य हैं, जितने भी भवदीय हैं, भवदीय माने आपके जो जन हैं, उनमें ये श्रेष्ठ हैं, मुख्य हैं, भवदीय मुखिया। तो गूढ़म बने पिना जहा तनघात में दैवम, यद्यपि आप छिप करके गोप वेश में गाय चरा रहे हैं, फिर भी आपको ये पहचान लिए हैं कि आप इनके प्रभु हैं, इनके स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं गोप वेश में, लेकिन ये कहते हैं गूढ़म बने, आप वन में कभी छिपते हैं, यहाँ तक कि एकांत में भी श्री राधा आदि के साथ भी जो आप लीला करते हैं तो ये सब जान जाते हैं और वहां भी पहुंच जाते हैं। भौरे भौरों की पहुंच सब जगह। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते करते कभी अलक्षित रूप से चले जाते हैं वन में, कहीं किसी गोपी से भेंट होती है, श्री राधा से भेंट होती है, भौरे वहां भी चले जाते हैं, इनके लिए कोई प्राइवेट जगह नहीं दुराव नहीं है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि ये तो गूढ़म बने अपि, ये जब आप वन में छिप जाते हैं उस समय भी आपके साथ रहते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हमेशा गाते रहते हैं। क्या? तव जस गायंती, जस की विशेषता बता रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम, भगवान की कीर्ति ऐसी है जो समस्त जगत को, सभी जीवों को तार देती है। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला, जो जीव की अविद्या को नष्ट कर दे और उसको ऊपर उठा दे, उसके स्वरूप में कर दे, उसको तीर्थ कर दे। तो गंगा आदि नदियों में स्नान करने से जीव की शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जैसी शुद्धि भगवान का कीर्तन गाने से होती है, भागवत सुनने से, भक्तों का आश्रय लेने से, वैसी शुद्धि गंगा आदि से नहीं हो पाती। जैसे प्रकट उदाहरण है कि श्रील प्रभुपाद जी जितना पावन कर दिए समर्थ, गंगा जी में इतनी शक्ति नहीं है पावन करने की। और जो साधु होते हैं जंगम तीर्थ होते हैं, चलता फिरता तीर्थ, गंगा आदि नदियां तो केवल एक लकीर में बहती हैं, वहां से हट करके दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन शास्त्र वर्णन करता है एक साधु एक ऐसे तीर्थ होते हैं जो चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तारते हैं। किस चीज से तारते हैं? श्रीमताम स्व कथाम कृष्ण, कृष्ण कथा से तारते हैं। वास्तव में जीव को तारने वाली वस्तु है कथा, भगवान का यश, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।
इसलिए भगवान का यश हमेशा गाना चाहिए, और विशेष करके इस युग में तो भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन हो नहीं सकता, करने की योग्यता भी नहीं है किसी में, समय नहीं है, कई प्रकार से। तो पहले से ही यश की बहुत महिमा है, और आज के युग में तो कोई उपाय नहीं। इन प्रसंगों से हमें भी सीखते चलना चाहिए कि हमें भंवरा बनना है, कृष्ण तो बनना नहीं है कि नहीं कि हमारा जस कोई गावे। एक जगह मैं गया था बसंत पंचमी के दिन, एक मठ में चला गया, नॉन वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैं देखा गुरु जी झूला पर बैठे थे, और जितने लोग आ रहे थे सब गुरु जी को झुला रहे थे, और भोजपुरी में गीत गा रहे थे, हमारे सत गुरुदेव के झूलेला पालना, हमारे सत गुरुदेव का पालना झूल रहा है। और मैं इसके बाद देखने लगा भगवान का कोई अस्तित्व है कि नहीं इस मंदिर में। तो भगवान श्री कृष्ण का फोटो था एक जगह, मेन जगह पर नहीं, कहीं लगाया गया था दीवार में, भगवान का कोई नामो निशान नहीं था, अल्टर में कहीं कुछ नहीं, केवल गुरु, तो गुरु को पूछ रहे थे। तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये बसंत पंचमी के दिन आप गुरु को झूला झूला रहे हो, भगवान कृष्ण को क्यों नहीं झूलाते? तो बेचारा इनोसेंट था, वो कहा कि तो हम तो नहीं जानते हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। हम कभी इस पर सोचे भी नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वास्तव में जीव के नित्य बंधु सब कुछ कृष्ण है, और गुरु कृष्ण से मिलाने वाला है, यह सिद्धांत है। तो कृष्ण का भक्त जो होता है उसका स्वभाव ही होता है कि वह कृष्ण की कीर्ति गाता है, कृष्ण से जीवों को जोड़ता है, कृष्ण के बारे में प्रचार करता है, अपना प्रचार नहीं करता, यद्यपि उसका प्रचार अपने आप हो ही जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का प्रचार किया, तो भगवान के प्रचार के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी को सारा जगत जान गया, तो हो ही जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, उन्होंने कृष्ण को लाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने इंटरनेशनल समाज की स्थापना की, तो इससे उनका प्रचार हो गया। लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्त का स्वभाव होता है कि सदा कृष्ण का यश गाता है। आज के युग में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यों के सामने आ रहा है कि परम सत्य को, परम पिता को, भगवान को जनता के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और इसमें सबसे भारी भूमिका कौन लोग निभा रहे हैं, कौन नहीं आने दे रहे हैं? साधु। तथा कथित साधु लोग नहीं आने दे रहे हैं, जनता को तो इससे कोई मतलब, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, अगर असली भगवान का पता लगे तो जनता खुश है। लेकिन जो अपने को भगवान कह कर प्रचार कर दिए हैं, उनके सामने बहुत भारी दिक्कत आ जाएगी, और इस हरे कृष्ण आंदोलन से वो दिक्कत पहुंच गई, क्योंकि असली भगवान का पता लग गया। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे प्रचार से नकली भगवानों को बहुत भारी दिक्कत होगी, वो नहीं चाहेंगे कि ये स्कैन फैले। और उनके पुजारियों को भी दिक्कत होगी जो वास्तव में असत्य पर रहना ही चाहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल शपथ ले लिया है कि मुझे असत्य पर ही रहना है, उनको इस हरे कृष्ण आंदोलन से बहुत दुख होगा। कितने लोग तो कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं, ये लोग तो केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं, जैसे लगता है कि एक संकीर्ण बुद्धि के आदमी हम लोग केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं। हम लोग थोड़े मानते हैं, भागवत कह रहा है, भगवत गीता में है, उपनिषद में है, सब सारे ग्रंथ, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण वेद्य हैं, तो हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो वास्तविक तो बात यही है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ मान लो तो वही सत्य हो जाएगा, तुम कुछ मान लो तो वही सत्य हो जाएगा। सत्य हमारे मानने की अपेक्षा नहीं रखता है, हमारी मान्यता की अपेक्षा सत्य नहीं रखता है, सत्य सत्य है। जैसे मान लीजिए रात्रि में हम सब लोग विवाद करना चालू करें कि पूर्व दिशा किधर है, ईस्ट डायरेक्शन किधर, और सूर्य अस्त हो चुका है, रात्रि में पता नहीं चल रहा है, कोई कहे कि इधर है, कोई कहे इधर है, कोई कहे इधर है, कोई कहे इधर है, और पांचवा व्यक्ति आकर के कहे कि थोड़ा थोड़ा सब साच हो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। निश्चित है कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति सत्य होगा। भाई इसका पता कैसे लगेगा कि पूर्व दिशा किधर है, क्या पता लगेगा अंधकार में, क्या पता लगेगा? लेकिन अंधकार में भी पता लगाने की एक विधि है, स्टैंडर्ड स्वीकार करना, जो नियम है वो स्वीकार करना। नियम क्या है? नियम यह है कि सूरज जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहा जाता है। नियम ये है, पूर्व में सूरज नहीं उगता है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया पंचम स्कंध में, सूर्येण ही विभज्यन्ते, सूरज के द्वारा दिशाओं का विभाजन होता है। पूर्व दिशा में सूरज नहीं उगता है, ये समझने की बात है। सूरज जिधर उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो जिन लोगों को ये स्टैंडर्ड मालूम रहेगा तो विवाद को क्षण भर में हल कर देंगे, चुपचाप रहो, सवेरा होने दो, अपने आप पता लग जाएगा पूर्व किधर है कि नहीं, सवेरा होने दो। ये शास्त्र जो है वो सूरज की तरह है, वास्तव में श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सूरज की तरह है। श्रीमद् भागवतम की तो उपमा दी गई है कि स्वधाम कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलौ नष्ट दृशा में सब पुराण आर्को अधुनोदित। यह पुराण सूरज उदित हुआ है, जिस सूरज के उगने पर हम सब कुछ क्लियर देखते हैं। एक गिलास इधर है, भागवत इधर है, ये टेबल इधर है, डीटी इधर है, वो आदमी सब कुछ देख रहे हैं ना। लेकिन सूरज न रहे, कोई प्रकाश न रहे, तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे। तो शास्त्र जो है सूरज की तरह लाइट देता है। हम कौन है, इस जगत को बनाने वाले कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, क्या साधन है, क्या साध्य है, लोक परलोक स्वर्ग नरक वैकुंठ क्या है, इन सारी बातों पर रिफ्लेक्शन डालता है शास्त्र, सब कुछ क्लियर बताता है। इसलिए इसकी उपमा सूर्य से दी गई है। तो जैसे मान लीजिए रात्रि में विवाद हो रहा है, रात्रि में विवाद हो रहा है, और कोई व्यक्ति यह कह दे भाई जिधर सूर्य उगता है उसको हम पूर्व दिशा मानते हैं, तो इस बात को न जानने वाले कुछ लोग कहें कि ये तो केवल सूरज रटता है। सूरज जिधर उगेगा वो तो उसको पूर्व कहता है। इसका जो विचार है वो सीमित विचार है, वास्तव में उदार विचार होना चाहिए। जो जिधर कहते वही पूर्व है। जत मत तत पंथ, जत मत तत पंथ। आज के युग में अद्भुत अज्ञान छा गया मनुष्यों को कि इतना नग्न सत्य भी लोग नहीं समझ रहे। तो इसी तरह से शास्त्र जब कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, हम सब कौन है, चाहे केवल यही बात नहीं कि शास्त्र भगवान का वर्णन करता है और हमको छोड़ दिया, हमारा वर्णन हम क्या है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमारा भी वर्णन करता है हम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश जीव है, जो जीव भूत स्थिति में इस समय है, इस लोक में, इस शरीर में, ब्रह्मभूत नहीं है इस समय, वास्तविक सत्ता है वो ब्रह्मभूत है, लेकिन इस समय वो जीव भूत है इस लोक में, इस शरीर में, वो ममई अंश मेरा ही अंश। सारी दुनिया में जितने जीव हैं उनको भगवान कहते हैं मेरे ही अंश है। हम ऐसा नहीं कह सकते ममई वंश कृष्ण, हमारा ही अंश भगवान है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारा अंश क्या भगवान हो सकता है, हमारा अंश कोई नहीं है वास्तव में। यहां तक जो बेटा है बेटी है वो भी हमारे अंश नहीं है, है कि नहीं। हम मर जाएंगे फिर भी वो जीवित रहेंगे वो हमारा अंश नहीं है, और हमारे जन्म लेने से पहले भी वे थे, भले अदृश्य थे, दूसरे शरीर में थे। वो जो जीव है उसके साथ भी हमारा संबंध नहीं है, और जो शरीर है उसके साथ भी संबंध नहीं है। उनका जो शरीर है वो बहिरंगा प्रकृति का दिया हुआ है, उपादान कारण प्रकृति है, और जो चिन्मय जीव है भगवान श्री कृष्ण का की परा प्रकृति है, चाहे अपरा प्रकृति उनकी या परा प्रकृति, लेकिन जीव का एक जीव के साथ कोई खास संबंध नहीं, नहीं कह सकता है मेरा अंश है। श्री कृष्ण तो सबके लिए घोषित कर रहे, सभी मेरे अंश है। तो जीव का भी वर्णन जगत करता है, ये शास्त्र करता है। श्रीमद् भगवद गीता में खास करके 5 विषयों का वर्णन है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, 5 विषयों का भगवान ने वर्णन किया। तो उसमें जीव भी एक विषय है। जीव है, एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में बहुत बहुत विवाद है, क्या है, कहां से आ गया, कैसे क्या करेगा, तो और बातों का तो बहुत बढ़िया से पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता चलता है कि भगवान का भजन करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा, इतना क्लियर वर्णन मिलता है यह स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जीव का वर्णन है, श्रीजीव गोस्वामी ने जीव तत्व भी अपने सर्ट संदर्भ में एक सेक्शन में रखा है, जीव तत्व उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। अच्छा, ये प्रकृति क्या है, जड़ जगत क्या है, कर्म का क्या अर्थ होता है, काल का क्या अर्थ होता है, ये सारी बातों का वर्णन किया गया। तो हम लोग वास्तव में इस शास्त्र के अनुगत विचार को ग्रहण करके कहते हैं कृष्ण भगवान है और जीव उनका दास है, सबको शरण लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जीव है इस प्राकृत जगत में जो इसको ग्रहण नहीं करते, उनकी श्रद्धा है भगवान में लेकिन चाहे पहले के सुन करके या कल्पना करके कहते हैं कि हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन वो एक शक्ति है और निराकार है। संसार में हम समझते हैं कि 95% मानव की जनसंख्या इसी अज्ञान में है, निराकार मानते हैं प्राय। हिंदुओं में भी बहुत निराकारवादी हैं, बहुत कम लोग हैं जो भगवान के रूप को मानते हैं और समर्पण करते हैं। समर्पण करने वाले तो बहुत बहुत कम हैं, लेकिन भगवान का अंग मानने वाले कुछ हैं, बाकी और सब जगह तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तो पाश्चात्य देश तो पूरा पूरा शून्यवादी और निर्विशेषवादी। तो यह एक अज्ञान है वास्तव में। तो श्रील प्रभुपाद इस अज्ञान को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना किए। तो यह अंतरराष्ट्रीय समाज कृष्ण भक्ति उत्पन्न करने के लिए है और हो रहा है रियली सब जगह। जो इसके संपर्क में आते हैं, खास करके इसके लिटरेचर के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में, तो वे कृष्ण को जान जाते। तो जिस कृष्ण की भक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना हुई, उसी कृष्ण का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवतम, जहां हम लोग ये सुन रहे हैं। ते मुनि लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाते रहते हैं। मेरा मुख्य तात्पर्य है गाने से था। और अखिल लोक तीर्थम, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के जितने भी जीव हैं, यदि सबको हम तारना चाहते हैं, उनका अज्ञान मिटाना चाहते हैं, पाप ताप समाप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण के यश को गाने के लिए उन्हें कहना चाहिए, कृष्ण के नाम को गाने के लिए कहना चाहिए। यदि कोई गाता है सुनता है तो तर जाएगा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
और इस सिद्धांत को स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। बलराम जी से कहते हैं कि तव यश अखिल लोक तीर्थम, हे प्रभु आपका जो जस है वो अखिल लोक तीर्थ है। खिला का अर्थ होता है अपूर्ण और अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण जीवों को एक तरह से तारने के लिए समर्थ है भगवान का कीर्तन। इसे बढ़कर के प्रबल साधन कुछ है ही नहीं, भगवान की विशेषता। इसीलिए हम लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, और ये प्रकट अनुभव है सारे जगत में कितने लोग शुद्ध हुए। तो प्रायः ये मुनि है और आपके भक्तों में प्रधान है, अपने इष्ट देव को आपको अर्थात मुझे एकांत में भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, सब जगह जाते हैं, जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां जा रहे हैं। इसके द्वारा भगवान मुनि शब्द की परिभाषा भी दे रहे हैं, डिफिनेशन दे रहे हैं कि जो मेरा यस गाता है वही मुनि। एक प्रकार से मौन रहने वाला मुनि नहीं, मौन का अर्थ होता है यथार्थ भाषण, मौन का अर्थ ये नहीं होता है चुपचाप रहना। चुपचाप रहना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक आश्रम में मैं गया तो वहां लिखा हुआ था बोलिए मत। हम लोग तीन चार भक्त थे जा रहे थे, तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, 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 राम। जपते हुए जा रहे थे, लेकिन मैं तो पढ़ा बोलिए मत, लेकिन हम लोग बोलते ही जा रहे थे। तो एक साधु उधर से दौड़ा हुआ आया, मैं आगे बढ़ गया था और दूसरे भक्त थे उन लोगों से कहा चुप 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 बोलिए मत चुप चुप चुप। और उसके गुरु जी बैठे थे भीतर, पूरे हाथे में पूरे मतलब उस घेरा में बोलना नहीं था, जो भी आते थे चुप चले जाते थे, गुरु जी के पास भी चुप बैठते थे और गुरु जी भी चुपचाप रहते थे। पता नहीं ये चुप के द्वारा कौन शक्तिपात करते थे। तो इस तरह से चुप 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 चुप, हम लोग तो चुप वाले नहीं, हम लोग तो बल्कि चुप वालों को कहते हरी बोल।